भाई जी, समय साहब दिनांक 25/3/2016
अभी अपन गुरुदेव के चिंतन में जो जो बोल थे उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। वो बोल क्या है कि आचार्य भगवंतों ने आत्मा का स्वरूप अपने उदार स्वभाव का आश्रय करके जो अपने आत्मद्रव्य का अनुभव किया तो उसमें उन्होंने कैसा आत्मा देखा वो उसका वर्णन शास्त्र में जो किया हुआ है वो पूज्य गुरुदेव सिंह ने तो जब अनुभव किया तो वो अक्रम रूप से अपने आत्मद्रव्य को उन्होंने जान लिया। तो वो आत्मद्रव्य कैसा है कि अनंतात्मक है, अनंत धर्मात्मक है और अनेकांतात्मक है। तो अनेकांतात्मक माने क्या कि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाश था, वस्तु में वस्तुपणा को निपजावना ली, दो परस्पर विरुद्ध शक्तियों का प्रकाशना, उसका नाम अनेकांत है। तो इस प्रकार से आत्मा ने इस जो आत्मा को अनुभव में जैसा आत्मा है ऐसा वो जानने में आया तो वो तो अनुभव में तो अक्रम रूप से पूरे का पूरा आत्मा जैसा है ऐसा उनको ज्ञान में हो जाता है, जानने में आ जाता है। दृष्टि उसकी एक पर है, अभी दृष्टि की बात नहीं है, अभी ज्ञान की बात चल रही है। तो ज्ञान जो है उसमें जैसा आत्मद्रव्य है ऐसा पूरा का पूरा जानने में आता है। तो उसमें निर्विकल्प प्रमाण और नहीं उसमें घटा सकते हैं, वो निर्विकल्प प्रमाण से वो आत्मा पूरा का पूरा जैसा है उसको ज्ञान में आ जाता है। फिर वो उधर से उपयोग छूट जाता है, उपयोग छूट के वो सविकल्प में आते हैं। तो निर्विकल्प में अतीन्द्रिय ज्ञान में भावशुद्ध ज्ञान में स्वसंवेदन ज्ञान में जैसा आत्मा अक्रम रूप से जानने में आया वो क्रम से समझाते हैं, वो अक्रम से नहीं समझा सकते, वो क्रम से समझा सकते हैं। तो जैसा आचार्य भगवंतों ने वो क्रम से अपने आत्मद्रव्य का स्वरूप समझाया ऐसा ही गुरुदेव ने उसको ग्रहण करके अपने स्वानुभव से प्रमाण किया और निर्विकल्प ध्यान से वो आत्मद्रव्य जैसा है ऐसा उनको भी जानने में आया। अभी वो जब सविकल्प में होते हैं तो ऐसा आत्मद्रव्य जैसा है वैसा आत्मद्रव्य का वो चिंतन करते रहते हैं कि ऐसा हमारे आत्मद्रव्य है। तो उसके जो बोल है वो अपन इधर चर्चा में ले रहे हैं। तो आत्मद्रव्य तो अनेकांतात्मक है, तो उसमें कोई पूछे कि उसमें राग है कि नहीं तो उसका एक जवाब नहीं हो सकता है। वो ज्ञान की परिरेखा करता है कि नहीं तो उसका एक जवाब नहीं हो सकता है। वो आत्मद्रव्य जो है वो स्वप्रकाशक है या स्वपर प्रकाशक है उसका एक जवाब नहीं हो सकता है क्योंकि आत्मा अनेकांतात्मक है। तो उस आत्मद्रव्य के अनेकांतात्मक वस्तु को समझाने के लिए ब्रॉडली ऐसे शॉर्ट में देखो तो तीन पद्धति से आचार्य भगवंतों ने समझाया है। एक तो दृष्टि प्रधान पद्धति और दूसरी एक अध्यात्म ज्ञान प्रधान पद्धति और तीसरी एक आगम ज्ञान प्रधान पद्धति। ये अपने आत्मद्रव्य की ही बात चल रही है, बाहर से कुछ संबंध नहीं है, परद्रव्य से कुछ संबंध नहीं है, अपना आत्मा कैसा जानने में आया उसके साथ संबंधित है। तो सब प्रयोजनभूत बात है, जैसा जैसा आत्मा है ऐसा ही सब जानने में आया और उस आत्म द्रव्य को समझाने के लिए तीन पद्धति से समझाते हैं और हरेक पद्धति में निश्चय व्यवहार और प्रमाण ज्ञान होता है। जैसे अपन अभी सुबह में चला था 6 गाथा फिर 11 गाथा है वो दृष्टि प्रधान से बात है। दृष्टि प्रधान जिसका आश्रय करने से जिसका अवलंबन करने से जो भूता स्वभाव का अवलंबन से जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ सम्यक दर्शन प्रकट हुआ वो दृष्टि का विषय है। दृष्टि प्रधान दृष्टि का विषय है। दृष्टि प्रधान निश्चय नहीं का विषय है शुद्ध नहीं का विषय है। तो वो आत्मद्रव्य को अपन ये 4 उंगली से समझाते हैं वो 4 उंगली से समझने से थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये 4 उंगली से कैसे समझा जा सकता है कि ये जो है वो अपना त्रिकाणी द्रव्य है अनंत शक्तिमय अनंत गुणात्मक अपना जो त्रिकाणी द्रव्य है वो पहली उंगली में जाता है ये ध्रुव सामान्य अनंत शक्तिमय। और उसमें जो आज सुबह में पूज्य गुरुदेव श्री लेते थे कि अनंत पर्याय वो उसमें भूत और भविष्य की सब निमग्न है वो इसमें है द्रव्य स्वभाव में ये जो द्रव्य स्वभाव है उसमें जो भूतकाल की जितनी पर्याय भूखे व्यय हो गई वो सब इसमें निमग्न है और भविष्य में जो भी आने वाली है वो सब इसमें निमग्न है। ऐसा अपना जो त्रिकाली अनंत शक्तिमय अपना जो द्रव्य है वो अपरिणामी है कूटस्थ है निष्क्रिय है इस प्रकार से रहा हुआ है। मगर जो उत्पाद भी का प्रवाह चलता है उत्पाद भी परिणमन चलता है उसके साथ में ही ये ध्रुव का प्रवाह भी वर्तता रहता है उसके साथ साथ में चलता रहता है। बुद्ध बोलते थे ना कि वो जो पर्याय है वो भविष्य के पर्याय से उसमें आती है और फिर वे होके उसमें चली जाती है। तो उत्पाद भी की पर्याय के साथ में ही ध्रुव का प्रवाह भी वर्तता रहता है चलता रहता है। तो वो वर्तते हुए भाव को ये कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं ये कारण शुद्ध पर्याय दूसरी अंगुली जो है वो कारण सूत्री है ये त्रिकाली द्रव्य और उसके साथ में वर्तने वाली उचित पंचम भाव की परिणति ये कारण सूत्र पर्याय जो जो भी कार्य प्रगट में करने की भावना है उसका कारणपना अंदर में त्रिकाली द्रव्य नियम में वो वर्तता रहता है। जैसे पर्याय में श्रद्धा प्रकट करने की भावना है कि मैं सम्यक दर्शन प्रकट करूं तो अंदर में जो श्रद्धा गुण है उसकी पूजित पंचम भाव की परिणति के कारण शुद्ध पर्याय उसकी अविच्छन श्रद्धा वो चालू की चालू रहती है। ये एक समय की पर्याय है ये जो है त्रिकाली द्रव्य है वो तो अनादि अनंत है ध्रुव सत्ता है मगर उसमें साथ में जो पूजित पंचम भाव की परिणति है वो एक समय की है एक एक समय में वर्तमान 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 वर्तती है। इस प्रकार से इसका ऊर्ध्व प्रवाह है ऊर्ध्व प्रवाह जो चलता है नीचे से ऊपर तक ये अनादि अनंत जो कारण जो त्रिकाणी द्रव्य अपना जो है अनंत शक्तिमय उसके साथ में ही हरेक समय में पूजित पंचम भाव की परिणति उसके साथ में ही वर्तती रहती है। ये दो हो के ये ध्रुव सामान्य और ये ध्रुव विशेष ये सब गुरुदेव के शब्द हैं। गुरुदेव के शब्द में जो उन्होंने बात समझो अपने को समझाइए वो ही अपन समझते हैं। तो ये पूरे का पूरा अपना ध्रुव सत्ता परम पारिणामिक भाव दृष्टि का विषय कारण परमात्मा ये पूरे का पूरा अपना कारण परमात्मा है जिसका आश्रय और अवलंबन करने से सम्यक दर्शन की पर्याय में प्राप्ति होती है। ये सब उसके भेद है भेद है मगर वो भेद रूप से एक एक का ग्रहण नहीं होता है उसका अभेद रूप से ग्रहण होता है। ये भेद से तो समझाते हैं मगर उसका जब दृष्टि होती है तो दृष्टि निर्विकल्प है तो भेद को नहीं स्वीकार करती है वो तो निर्विकल्प अवस्था निर्विकल्प वस्तु को स्वीकार करती है। तो ये अभेद पड़े उसको जब दृष्टि में लेती है तब उसको कार्य में सम्यक दर्शन की प्रक्रिया प्रकट होती है। तो ये अपनी ध्रुव सत्ता हुई ये ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष द्रव्य गुण और कारण शुद्ध पर्याय होके ये दृष्टि का विषय पूरा होता है। जो पर्याय अपने को भूल के ये दृष्टि के विषय में ये ही मैं हूं द्रव्य तो अपने से पूरा है ही मगर पर्याय भी अपना अस्तित्व भूल के जो ऐसा स्वीकार करती है वो ऐसा अनुभव करती है कि मैं तो ये द्रव्य हूं तो उसका कारण क्या है कि अनंत इसे अपने वैभव से भरी हुई है अपने विलास से भरी हुई है। क्या क्या विलास है उसमें कि अनंत शक्ति है आकाश के प्रदेशों से भी अनंत गुणी अपनी शक्ति है और उसमें ये सब पर्याय भूतकाल की और भविष्यकाल की पर्याय निमग्न है और उसकी कारणसूत पर्याय हरेक समय में वर्तती हुई उसकी कारणसूत पर्याय है। ये हो के अपना द्रव्य स्वभाव परम पारिणामिक भाव कारण परमात्मा में पूरा होता है। अभी उसमें से जो चैतन्य अनुविदाई परिणाम प्रकट होता है पर्याय भी प्रकट होती है उत्पाद विवारी पर्याय यह अपनी ध्रुव सत्ता की बात है। अभी उत्पाद विवारी जो पर्याय है उसमें भी दो भाव है उत्पादने वाले पर्याय में जब मिथ्यादृष्टि है, अज्ञानी है, राग द्वेष की क्रिया करता है, उसी समय में उसके पास एक चैतन्य अनुदय परिणाम है। चैतन्य जो है वो ऐसा निरंतर वर्तता हुआ जो भाव है, उसमें से एक परिणाम हरेक जीव को अनादि अनंत प्रकट होता ही रहता है। उसमें कितना भी आवरण हो जावे, फिर भी वो चैतन्य का अंश जो है वो उसकी पर्याय में हमेशा प्रकट ही रहता है। तो एक चैतन्य के अनुसार होने वाला एक चैतन्य अनुविधय परिणाम, चैतन्यमय परिणाम, जिसको अभी अपन किसी भी अपेक्षा नहीं लगाते हैं। कर्म के संबंध की और कर्म के अभाव की कोई अपेक्षा हो बिना का ये चैतन्य में से आने वाला एक चैतन्यमय परिणाम, जब भी राग होता है तभी उसी साइन वो जो ज्ञान का परिणाम है वो चैतन्य का परिणाम है। राग जो है वो परद्रव्य से भिन्न है, उसको जड़ भी एक अपेक्षा से कहा जाता है। उसी समय में ज्ञान का परिणाम है वो आत्मा से अभिन्न है। इस प्रकार से एक जो चैतन्य का परिणाम है वो उसको एक ज्ञान सामान्य कहते हैं, उपयोग सामान्य कहते हैं, इस पर्याय का सामान्य बना। और वही समय में वही पर्याय वो कर्म के संबंध करके वो शुद्ध हो जाती है या कर्म का संबंध छोड़ के वो शुद्ध हो जाती है। तो कर्म सापेक्ष भाव है, तो कर्म सापेक्ष भाव है वो इसमें होता है। ये मोह राग द्वेष के परिणाम जो होते हैं इसमें अज्ञान होता है, इंद्रिय ज्ञान होता है, और रंग राग और भेद ये सब जो बोध है वो इसमें होते हैं। तो इस प्रकार से ये पर्याय में भी दो भाव, एक चैतन्यमय परिणाम, चैतन्य में से आने वाला होने वाला एक परिणाम चालू है, ये पर्याय सामान्य, ये उत्पाद सामान्य, उपयोग सामान्य, और एक उपयोग विशेष जो पर के साथ में संबंध करता है और छोड़ता है। इस प्रकार से ये उपयोग विशेष है, ये इस प्रकार से अपना अस्तित्व है चार प्रकार से। अभी जो आचार्य भगवंतों ने जो समझाया तो उसमें ये जो दृष्टि का विषय है उसका तो आश्रय और अवलंबन लिया तभी उनको आत्मा का अनुभव हुआ है। इसलिए दृष्टि जो है वो निर्विकल्प है, वो एकांतिक है। तो ये पूरा अपना अखंड अपरिणामी ऐसा ध्रुव सत्ता को ही दृष्टि में लेती है, परिपूर्ण परमात्मा द्रव्य को दृष्टि में लेती है। तो ये दृष्टि प्रदान निश्चय का विषय है, और उसके साथ में ये जो पर्याय जो प्रकट होती है वो व्यवहार का विषय है, और दो के प्रमाण ज्ञान का विषय रहता है ये दृष्टि प्रदान पद्धति। अभी एक अध्यात्म ज्ञान प्रदान पद्धति है। तो ये जो दो पर्याय इसमें से निकाली कि चैतन्यमय परिणाम और एक रागादि परिणाम, तो ये जो चैतन्यमय परिणाम है उस और इसके साथ में मिला के देखना कि ये जो है वो आत्मा से अभिन्न है, आत्मा इस रूप से परिणमता है। जैसे 47 शक्ति में अभी जो बात चलती है उसमें द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, कारण शुद्ध, पर्याय शुद्ध, और उसमें से जो उसकी जो व्यक्ति होती है परिणाम प्रकट होता है वो भी शुद्ध। इस प्रकार से जो समय साथ के परिशिष्ट में जो बात आई है वो अध्यात्म ज्ञान प्रदान पद्धति में आती है। ये अध्यात्म ज्ञान प्रदान पद्धति में ये निश्चय का विषय, ये पूरा का पूरा निश्चय का विषय होगा, और रागादि परिणाम जो है वो व्यवहार का विषय होगा, और दो होके प्रमाण ज्ञान होगा। फिर ये अगम ज्ञान प्रदान पद्धति है। तो ऐसा आत्मा द्रव्य जो है वो शुद्ध रूप से तो है, मगर उसकी दशा में अनादिकाल से पर के संबंध से अशुद्धता भी चली आती है। आज ही पूज्य गुरुदेव जी ने बोला था कि आचार्य भगवान भी ऐसा जानते हैं कि मेरी परिणति कल्मासित है, तो वो जो है कल्मासित पद्धति है, वो जो परिणाम है उसका निमित्त क्या है कि कर्म है, कि कर्म के कारण से इस मेरी परिणति अनादिकाल से इस प्रकार से हुई है। तो ये जो है ये आगम ज्ञान प्रदान पद्धति, आगम ज्ञान भी उसमें रहता है। अगम ज्ञान से अगम ज्ञान मानी वो आगंतुक भाव, आगंतुक भाव को भी आत्मा में ताप के वो उसको देखना, वो आगम ज्ञान प्रदान पद्धति है। वो ज्ञान ऐसा भी जानता है कि ये जो अनंत धर्मात्मा का अपना जो भाव है, अनंत शक्ति, अनंत धर्मों में व्यापक अपना जो सामर्थ्य है, और उसको एक एक को विषय करने वाली एक एक नई है, उस अनंत नये में व्यापक जो सूत्र प्रमाण है वो स्वानुभव प्रमाण से वो प्रमेय होता है। स्वानुभव में, स्वानुभव जब प्रकट होता है तो उस प्रमाण ज्ञान जो प्रकट होता है उसमें कैसा आत्मद्रव्य ज्ञानियों को जानने में आता है, कैसा आत्मद्रव्य जानने में आता है कि अनंत धर्मात्मक है, तो शुद्धाशुद्ध सब पर्यायों का पिंड है, ऐसा वो आत्मद्रव्य अपने ज्ञान में, अनुभव में, ज्ञान में जानने में आता है। तो ये जो है ये आगम ज्ञान प्रदान, ये इसको निश्चय नहीं कहेंगे, इसमें आएगी आगे से नई की चर्चा एक मर्ज ले रहे हैं, उसमें 44-45 नहीं है वो व्यवहार नहीं हो निश्चय नहीं, ये पूरे का पूरा निश्चय नहीं का विषय है। शुद्धा शुद्ध पर्याय हो जो भी कर्म के संबंध से होती है और उससे अवैध बना बंध और मोक्ष पर्याय रूप से परिणत अपना आत्मद्रव्य है उसका अवैध बना वो निश्चय नहीं का विषय है और कर्म के साथ में संबंध होता है वो छूटता है वो व्यवहार नहीं का विषय और दो होके प्रमाण ज्ञान होता है वैसा वो प्रमाण ज्ञान में आत्मद्रव्य जो होता है वो उसमें वो प्रमेय हो जाता है। तो वो जब ऐसा समझाते हैं तो ये तो ज्ञानियों को ज्ञान में इस प्रकार से ज्ञान हुआ तो अपने को तो ऐसा ज्ञान है नहीं तो वो जो समझाते हैं तो अपने को तो दृष्टि का विषय दृष्टि में लेना चाहिए ना। नहीं ऐसी बात नहीं है जो भी बात करते हैं वो बिन प्रयोजनभूत नहीं है हरेक का प्रयोजन है वो जो समझाते हैं वो हरेक को प्रयोजनभूत होता है। तो ये आगम ज्ञान प्रधान जो अपने में राग ठाप के वो क्या करने का है क्या प्रयोजन सिद्ध करने का है कि उसमें ये प्रयोजन सिद्ध करने का है कि परद्रव्य से भिन्नता करनी है और तेरी दृष्टि अनादि से पर ऊपर पड़ी हुई है पर के साथ एकत्व बुद्धि है ममत्व बुद्धि है मैं इसका करता हूं मैं इसका भोगता हूं इस प्रकार से जो तेरी बुद्धि पड़ी हुई है तो तू ऐसा मानता है कि मैं इसको करूं ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा करूं तो उसको समझाते हैं कि नहीं ये तू नहीं कर सकता है तू अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही रहता है तो पर के साथ तेरा कुछ भी संबंध नहीं है तो तेरी मर्यादा कितनी है कि तेरे पर्याय तक की मर्यादा है तू पर्याय में मोहराज व्यस्त कर सकता है उसके आश्रय उसके लक्ष्य से संकल्प विकल्प कर सकता है मगर पर की क्रिया को इस पर तू उठा ही नहीं सकता है और छोड़ ही नहीं सकता है क्योंकि अनंत परमाणु का बना हुआ पिंड है। तू अपने में राग व्यस्त कर सकता है ये तेरी मर्यादा है। ये आगम दान प्रदान पद्धति में ये प्रयोजन की सिद्धि होती है कि ऊपर से भीन करा देती है। तो ये जो है वो आगम दान प्रदान पद्धति से ऐसा अपना स्वरूप हुआ वो भी प्रयोजन बुद्ध से जानना चाहिए और अपन किस जगह पे खड़ा है उस प्रकार से उसको प्रयोग करना चाहिए। ये सब बातें तो सब आएगी शास्त्र में तो समूचे बात आएगी सब जीव को लक्ष्य में लेके बात आती है मगर अपन किधर खड़े बात सब सुनना मगर ये दृष्टि के विषय की बात जब चलती है तो ये तो केवल ज्ञान के परे से विभिन्न है मगर अपने को ये देखना है कि अपनी दृष्टि किधर पड़ी हुई है। पर के साथ यदि एकत्व की बुद्धि चलती है तो अपने को वो जो है केवल ज्ञान जो है वो भी उससे विभिन्न में आत्मद्रव्य ऐसा ही विकल्प करते रहने से वो आत्मद्रव्य की प्राप्ति नहीं होगी उसको प्रयोग में ये पहला देना पड़ेगा नहीं ये उसको मैं नहीं कर सकता हूं मैं अपने संकल्प विकल्प कर सकता हूं मैं राग द्वेष कर सकता हूं मगर ये परद्रव्य को तो मैं नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार से वो पर से भिन्न पड़ के अपने द्रव्य गुण पर्याय में आना चाहिए। इस प्रकार से ये आगम ज्ञान प्रदान पद्धति में से प्रयोग की पद्धति में एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। ये प्रयोग पद्धति है ये ऐसा करके ये अपने आगम ज्ञान प्रदान प्रमाण में आता है। तो ये जो अभी वो गुरुदेव भी घुटते थे गुरुदेव भी इनका चिंतन करते थे गुरुदेव को तो अभी मालूम पड़ गया कि मेरा तो द्रव्य शुद्ध है और मैं ये शुद्ध पर्याय रूप से परिणमता हूं फिर उनको ये सब करने की क्या जरूरत है सैतालीस शक्ति की नहीं अपना आत्मद्रव्य उस काल में भी वो गुरुदेव के जो द्रव्य है वो भी उस भाव रूप से परिणमता है तो उनका वो ज्ञान करते हैं और अपने को भी समझाते हो वो अपने को भी वो जानना वो प्रयोजन पान है। तो इस प्रकार से वो परद्रव्य से भिन्न होके अपने द्रव्य गुण पर्याय में वो जी आ जाता है वो भले अशुद्धता उसमें हो फिर उसके आगे बढ़ता है कि ये जो पर्याय है वो तो पर के लक्ष्य से हुई तो वो तो अशुद्ध पर्याय है वो वैभाविक पर्याय है अपने स्वभाव पर्याय नहीं है चैतन्य की जात नहीं है उसमें वो तो पर के लक्ष्य से वो जड़ पर्याय है ऐसे वैभाविक पर्याय है तो ये मेरा स्वभाव नहीं है ये अनाधिनंत नहीं रहती है जब तक वो पर का लक्ष्य रहता है तब तक वो पर्याय का अस्तित्व तो है और जब उसका लक्ष्य छोड़ के अपने स्वभाव में लीन हो जाता है तो उसका अभाव हो जाता है इसलिए ये पर्याय मेरी नहीं है वो स्वभाव की दृष्टि से इस पर्याय का दूसरे स्टेप में उसको निषेध करने का दूसरा स्टेप जब आता है तो दूसरी श्रेणी में चढ़ता है जीव रोग में ये जिज्ञासु की बात है तो इसका वेदना करके अपने स्वभाव में आ जाते हैं ये अपना स्वभाव है पूरे का पूरा ये द्रव्य गुण कारण शुद्ध पर्याय ये अपना त्रिकाली स्वभाव है ध्रुव स्वभाव है और ये इसका चैतन्यमय परिणमन अनादि अनंत है ऐसा अपना चैतन्यमय परिणमन है उसमें तीन भेद पड़ जाते हैं ये अज्ञान अवस्था साधक अवस्था और सिद्ध अवस्था ये तो है वो तो अनादि अनंत है सब जीवों के पास परिपूर्ण सकल निरावरण रूप से विद्यमान है ये सब पूरा का पूरा द्रव्य मगर इसमें ऐसे स्टेप पड़ जाते हैं अज्ञान अवस्था में तिरोभाव रूप से होता है फिर इसमें अंश आविर्भाव होता है और फिर पूर्ण आविर्भाव रूप से होता है। इस प्रकार से राग में भी वो घटता जाता है, वो जैसे जैसे विज्ञान जन्म होता जाता है ऐसे आश्रम से निवर्तता जाता है, इस प्रकार की इसकी व्यवस्था है। तो ऐसा जो है वो पूरे का पूरा जैसा अपना स्वरूप है वो ज्ञानियों ने जो बताया है उसके और वो जो गुरुदेव चिंतन करते थे उसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें से अपने को इधर अव्यक्त के बोल लेने हैं। आज मुझे गुरुदेव श्री का तो अलौकिक प्रयोजन आज सबने सुना है।
तो तीसरी अंगुली में जो आपने बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा तीनों लिए, इसमें उपयोग सामान्य मात्र है तीसरे
उसका जो ग्रहण होता है, ये तीसरी अंगुली है उसका जो ग्रहण होता है वो सामान्य पने से होता है, सामान्य ये तो उपयोग सामान्य में उपयोग में ही हूँ, अनादिकाल से उपयोग में ही हूँ, राजदेश वाला नहीं हूँ मैं तो उपयोग में ही हूँ। इस प्रकार से वो द्रव्य गुण और पर्याय तीनों में मेरा चैतन्य बड़ा व्याप्ता है, ऐसा ही ज्ञान मात्र भाव हूँ ऐसा तो है बराबर है, वो उसी प्रकार से वो उसको ग्रहण करता है आत्मद्रव्य, मगर उसका उसके साथ में ज्ञान भी होना चाहिए कि इसमें इसका ज्ञान भी होना चाहिए कि ये जो जैसे ये कारण सूत्र पर्याय है वो जो अपना द्रव्य है वो अनादि अनंत सकल निरावरण रूप से है, ऐसे ही ये पर्याय जो है वो सकल निरावरण नहीं है, वो अभी आवरण वाली है, छलपस्त अवस्था है आवरण वाली है। तो इसमें कोई ऐसा ले ले कि इसमें केवल ज्ञान है तो ऐसा नहीं है, तो उसमें तो निश्चय आवास का दोष आ जाएगा। तो जैसी जितनी प्रकट है पर्याय इतना चैतन्य बना भी मेरे पास है ऐसा उसको जानना चाहिए, इसकी ज्ञान भी होना चाहिए। तो जिस जिस प्रकार के जो जो काल में जिस जिस प्रकार की पर्याय जैसी जैसी होती है उसका ज्ञान भी होना चाहिए और उसकी शक्ति का भी ज्ञान होना चाहिए। इसमें शक्ति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, जो तो जैसा केवल ज्ञान है ये अवयव है तो वो किसका अवयव है, कि केवल ज्ञान का अवयव है, केवल ज्ञान जो पूर्ण आविर्भाव रूप से प्रकट होता है ऐसा केवल ज्ञान है उसका ये अवयव है, ये उसका अवयव है। तो उसकी शक्ति कितनी है, तो शक्ति जो पूरी है शक्ति का भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो ये जितनी भी पर्याय है अधूरी उसमें ही अटक जाएगा। तो शक्ति का भी ज्ञान होना चाहिए, और यदि शक्ति ऐसी नहीं हो तो उसमें व्यक्ति कैसे प्रकट होगी, जब वो आवरण हट जाएगा तो उसमें से केवल ज्ञान सर्वज्ञपना प्रकट होता है तो कैसे प्रकट होगा, इसलिए इसकी शक्ति तो अनादि अनंत है और व्यक्ति जो जैसी है उसका भी उसमें ज्ञान होता है। मगर जो ग्रहण होता है कि मैं ज्ञान मात्र भाव हूँ, ज्ञाता ज्ञान के मैं अवैध हूँ, ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा इसमें अनुभव में आ रहा है ऐसा मेरा स्वरूप है वो अनादि अनंत है। और जैसे अभी 200 गाथा की बात चलती है प्रवचन सार की, सब नेव ज्ञान में कुड़ाई गये चित्राई गये डटाई गया वो एम एक क्षण प्रत्यक्ष करे छे, तो ये जो अपना स्वभाव है वो स्वभाव प्रकाशक है, ये जो चैतन्य अनुविधायी परिणाम जो है वो स्वभाव प्रकाशक है, क्योंकि इसमें शक्ति सर्वज्ञपना की है, सर्वज्ञपना की शक्ति हर एक समय में वर्त रही है, तो उसमें से आने वाला जो परिणाम है वो सर्वज्ञपने का है। सर्वज्ञपने का माने वो स्वभाव प्रकाशक का अंश है, अभी प्रकट नहीं है सर्वज्ञपना, मगर उसमें शक्ति ऐसी है और प्रकटपना जितना है उसमें भी सौ पर जितनी अपनी क्षोषण हो इस प्रकार से वो जानने की उसकी पर्याय में प्रकटता रहती है, इस प्रकार से इसका स्वरूप है।
ऐसा तो, जो जानना है वो उपयोग विशेष चौथी अंगुली में होता
नहीं, ये तो कर्म सापेक्ष भाव है, अभी अपन कर्म सापेक्ष भाव को नहीं देख रहे, अभी ये चैतन्य परिणाम को ही देख रहे, चैतन्यपना जिसमें व्याप्ता है वो चैतन्य 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 अनादि अनंत उपयोग 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 जानन 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 हो रहा है, उस पर्याय की बात करें जैसे द्रव्य जो है वो परिपूर्ण शुद्ध रूप से है,
इसीलिए पंडित जी कह रहे हैं कि जो कर्म सापेक्ष दशा है वो तो छोटी हुई।
हाँ वो तो छोटी हुई,
ज्ञान दशा
ये ज्ञान ये छोटी उंगली में जाती है और ये जो है वो ज्ञान ज्ञान का
पहली उंगली में भी शक्ति है और तीसरी में भी शक्ति
ये द्रव्य की शक्ति है, ये द्रव्य की शक्ति है, इसमें सर्वज्ञपना जो है वो तो परिपूर्ण पड़े से वर्त रहा है और तो निरावरण पड़े से वर्त रहा है, और ये जो है वो पर्याय की शक्ति है, पर्याय की शक्ति अलग है और ध्रुव की शक्ति द्रव्य की शक्ति वो अलग है। द्रव्य की शक्ति जो है वो तो परिपूर्ण रूप से रहती है और पर्याय की शक्ति तो पूरी ही है, उसमें से वो सर्वज्ञपना आवे प्रकट होवे ऐसी ही शक्ति है, मगर व्यक्ति अभी नहीं है ऐसी।
उपयोग सामान्य का ज्ञान उपयोग विशेष में होता है, ऐसा मेरा कहना है कि उपयोग सामान्य नहीं हो जाता,
नहीं उपयोग का आविर्भाव होता है, उपयोग सामान्य जो है उसका आविर्भाव होता है जब सम्यक ज्ञान होता है, निर्विकल्प अवस्था होती है, अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है, भावशुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, तो जब उपयोग का सामान्य बना था अज्ञान अवस्था में उपयोग का सामान्य बना था जानना 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 ऐसा जो अपना ज्ञान स्वभाव था प्रकट, वो उसमें ही अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा था, जब राग था मिथ्या तो था, उस काल में भी चैतन्य अनुदाय परिणाम उपयोग जो प्रकट है वो स्वभाव काम से स्वभाव की जात का है, तो उसमें ही अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है और उसमें ही स्वर प्रकाशक बना है। तो इसमें भी अज्ञान अवस्था के काल में भी ये उपयोग का जो है वो परिणमन तो है, मगर वो तीरो भाव रूप से है, इसकी दृष्टि किधर है, क्यों गेय आकार ऊपर है, उसमें जो स्वर प्रकाशक बना है उसमें जो भी गेय आकार होते हैं वो गेय आकार में एक में लुप्त होके वो उसको जानने में अटक जाता है, तो इंद्रिय ज्ञान हो जाता है, खंड खंड ज्ञान हो जाता है, विशेष ज्ञाकार ज्ञान का आविर्भाव होता है, ज्ञाकार हो वो तो उसका स्वभाव है, ज्ञान में वो गेद का आकार जैसा है ऐसा हो गए उसको उसका स्वभाव ही है, उसको इसका निषेध नहीं कर सकते, मगर वो ज्ञाकार ज्ञान का आविर्भाव करता है तो उस गेय में वो अटक जाता है, तो वो ज्ञान ऐसा निर्भर हो जाता है कोई इंद्रिय का माध्यम से पर का भ्रमण करके मैं जानता हूं ऐसी उसमें भ्रम होता है, तो ये इंद्रिय ज्ञान इसमें प्रकट हो जाता है, ये ज्ञान का अज्ञान हो गया वो उसमें एकत्व तो बुद्धि हो जाती है, जिस जिस ज्ञेय को जानता है उसमें एकत्व तो हो जाता है, तो ये अज्ञान हो जाता है, ये अज्ञान हो जाता है फिर भी उसमें उस काल में भी अपना चैतन्यपना है वो तैसा कैसा सुरक्षित है, कैसे कौन सा चैतन्यपना की पर्याय का चैतन्यपना, ध्रुव का चैतन्यपना तो सुरक्षित है ही मगर अपना पर्याय का चैतन्यपना है वो भी ऐसा का ऐसे सुरक्षित रहता है और तिरोभाव होता है उसका अभाव नहीं होता है, इसलिए जब उसका आविर्भाव करना चाहे तो विशेष का तिरोभाव जब करता है ये उसमें जो गेयाकार होते हैं उसका तिरोभाव करता है तो ये सामान्य का आविर्भाव हो जाता है और ये सुदुखी रूप से परिणम जाता है, ये आविर्भाव रूप से हो गया, साधक अवस्था में आविर्भाव रूप है, अज्ञान अवस्था में तिरोभाव रूप से, इस प्रकार से
अन्य गुणों की क्या स्थिति है, जो आपने उपयोग पर बताया अन्य सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र जो अन्य गुण है अल्पज्ञ अवस्था में जो उनका शुद्ध प्रणवन होता है वो तीसरी उंगली का विषय है चौथी उंगली का
नहीं, ये जो अज्ञान अवस्था में ये अज्ञान अवस्था की बात है, अभी अज्ञान अवस्था में क्या स्थिति है गुणों की बात पूछ रहे हैं पंडित जी, तो अज्ञान अवस्था में क्या स्थिति है गुणों के संबंध से, तो अज्ञान अवस्था में भी वो ज्ञान दर्शन और वीर्य ये तीन गुण जो है उसका परिणाम चलता है वो स्वभाव कांश रूप से विद्यमान है, और जो गुण है जैसे श्रद्धा का चारित्र का सुख का वो परिणाम इसमें अभी नहीं है, वो तिरोभाव रूप से चलता है, और जब उसका आविर्भाव होता है जो वो आत्मद्रव्य का अवलंबन करके आश्रय करके ये जो ज्ञान का जो परिणाम है वो उसका आश्रय करके जो अनंत शक्तियां उछलती है उसमें, तो जो सदुपयोग रूप से परिणमता है यानी भाव सुधान से, तो उसमें अनंत शक्तियों का परिणाम सर्व गुणास्ते सम्यक, जब ये साधक बना प्रकट हुआ और इधर से अपना जो आत्मद्रव्य का अनुभव वो प्रकट हुआ तो अनंत गुणों का परिणाम उसके साथ में चलता है, जब ये तीन गुणों का परिणाम जो तिरोभाव रूप से था और गुणों का परिणाम ही नहीं था वो तो ज्ञान वो विभाव रूप था, और ये भी तीन गुण भी विभाव रूप थे विकार रूप हो गए थे अज्ञान रूप हो गए थे वो सबका आविर्भाव हो गया, फिर इसमें भी ऐसे इस प्रकार से वो वैभाविक अवस्था जो है भाजकपना है वो उसमें घट जाता है और विभाव जो है इसमें अनंतानुबंधी और विख्यात का नाश हो जाता है, इस प्रकार से इसकी बात है। अभी अपन ये बात करते हैं, पहला बोल छह द्रव्य स्वरूप लोक जो गेय है और व्यक्त है उससे जीव अन्य है माटे अव्यक्त है, अनंत आकाश न मध्य में समुद्र न बिंदु की जेम मात्र 343 गंडाजू में पुरुष आकारे लोक है जेमा छह द्रव्य रहे छे जीव अनंत छे उद्गल परमाणु अनंता नंद छे, दरेक द्रव्य स्वतंत्र छे पोतपोताना अस्तित्व में स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वद्रव्य गुण पर्याय में रहेल छे, अत्यंत एक क्षेत्र गए रहे हो छता एक बीजाने स्पर्शता पण नथी, ये जो लोक है वो 343 राज्यों में गए तो अनंत आकाश की अपेक्षा से वो बिंदु समान है और उसमें अनंत द्रव्य रहते हैं, तो लोक का कोई भाग भी ऐसा नहीं है कि जिसमें छह द्रव्य नहीं है, छह प्रकार के लोक है और कोई भी ऐसा भाग नहीं है कि उसमें अनंत द्रव्य नहीं है, असंख्य प्रदेश की जो बात अभी चल रही तो लोक का ऐसा असंख्य प्रदेश में से कोई भी अंश ऐसा नहीं है कि जिसमें छह द्रव्य नहीं है, अनंत द्रव्य नहीं है, छह प्रकार अगर अनंत द्रव्य तो कोई को ऐसा लगे कि मैं तो किसी के साथ में संबंध नहीं करके वो निवृत्ति में एक जगह एकांत में जाके वो अपना अध्याय और स्वाध्याय करूं तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है विश्व में, तो छह द्रव्य ऐसे रहे हुए हैं एक बीजा में एक क्षेत्र उगाए रहे हुए हैं, मगर उसमें क्या है सुविधा क्या है कि सब स्वतंत्र है और सब अपने अस्तित्व में है विगुण पर्यायत्मक और सद्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहे हुए हैं, तो भले अपने ये जो मेरा आत्मद्रव्य है अभी तक तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहा हुआ है, तो आकाश के उसी क्षेत्र में अनंत द्रव्य रहे हुए हैं, अनंत परमाणु भी है और अनंत जीव द्रव्य भी है, मगर मेरे में किसी का प्रवेश नहीं होता है, मेरे को कुछ पड़ता ही नहीं है, मेरा उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है, तो मेरे को कोई हानि यह बाधा पहुंचा ही नहीं सकता है। इस प्रकार से अपने आत्मद्रव्य को देखना कि नहीं मेरे मेरा तो किसी के साथ संबंध ही नहीं है, कि अपने घर में ये 5, 7, 8, 10 मेहमान आ जावे तो अपना उपयोग डोट जाता है कि नहीं मेरा उपयोग डोट गया, नहीं ऐसा नहीं है, तू तो तेरे क्षेत्र में ही रहा हुआ है, क्षेत्र के साथ तेरा क्या संबंध है, इधर देवलाली में आवे तो अच्छा स्वाध्याय होता है, उधर राजकोट में जावे या मुंबई में जावे तो अपना स्वाध्याय नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये तो अपने क्षेत्र में ही रहा हुआ है, क्षेत्र के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है, कि आकाश के क्षेत्र से मेरा क्या संबंध है, और काल के साथ मेरा संबंध नहीं है कि अभी 1 घंटा स्वाध्याय हुआ 2 घंटा है, वो तो काल की सब व्यवस्था है, ये काल के साथ मेरा संबंध नहीं है, मैं तो अपने द्रव्य में ये अपने क्षेत्र में रहा हुआ हूं, जिधर भी जाऊं मैं अपने क्षेत्र में ही हूं, स्वर्ग में जाऊं या मनुष्य लोक में जाऊं किधर भी जाऊं मैं तो अपने क्षेत्र में ही हूं, और मैं अपने काल में ही हूं, वो त्रिकाली काल में और ये वर्तमान जो काल है मैं उसमें ही रहा हुआ हूं, तो अपना काल से वो उस काल द्रव्य से अपना कुछ संबंध नहीं है, इस प्रकार से अपने द्रव्य क्षेत्र काल में रहा हुआ है, इस प्रकार का निर्णय करना कि ये 6 लोग जो है वो गे है, तो गे किस प्रकार के है, वो कैसे जानने में आता है कि मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हूं और बाकी जो सब द्रव्य है वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहे हुए है, इस प्रकार से इसका निर्णय करना, एक बीजाने स्पष्टता नहीं, एक बीजाने कोई संबंध नहीं, आ विश्व में कोई एक जीव द्रव्य हूं ज्ञाता छू, मैं ही ज्ञाता हूं और सब मेरे से भिन्न है, गेय और भिन्न है, इसलिए वो व्यक्त है मैं अगत्य, जे पोतामा मारो ज्ञान स्वभाव विशिष्ट है, जे पोतामा रहीने पोताने तथा समस्त विश्व ने 6 द्रव्य ने प्रकाशे छे, हूं तेनाथी भिन्न विश्व ना उपर तरतूं 7म द्रव्य छू, वो सातमान वो मनन में आया है कि मैं 7म द्रव्य हूं, मैं विश्व के ऊपर तरता हूं तैरता हूं, ये मेरे जो है 6 द्रव्य स्वरूप लोक है वो मेरे जानने में नहीं आता है, उसका साथ मेरा गेय गाय का संबंध है ऐसा कहा जाता है, तो गेय जो है वो तो मेरे ज्ञान में सहज पड़े सहज निग्नायक लक्षण है, सहज निग्नायक लक्षण वो मैं गेय हूं मैं ज्ञाता हूं ये मेरे गेय है, इस प्रकार से उसका लक्ष्य करके जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने ज्ञान में सहज पड़े जानने में आ ही रहे हैं, तो सहज ऐसा गेय का एक लक्षण है, मगर उसमें एक जो गेयाकार होता है उसको पकड़ के इसको जानू फिर इसको जानू फिर इसको जानू इसी को जानू, इस प्रकार से व्यक्ति परिवर्तन करके ये की सन्मुख होके जो जानना होता है वो तो इंद्रिय ज्ञान है, खंडखंड ज्ञान है, वो ज्ञान का स्वभाव ही नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है, वो तो जड़ भाव हो गया, जैसे राग जो है वो जड़ भाव है, ऐसे ही ये जो इंद्रिय ज्ञान है वो जड़ भाव है, वो कर्म के संबंध से वो ज्ञेय के संबंध से होने वाला होने से वो ज्ञेय है, वो भावेन्द्रीय से भी अपने को भिन्न करा भिन्न जाते हैं, द्रवेन्द्रीय से भावेन्द्रीय से और उसके विषय से ज्ञानी अपने को भिन्न जाते हैं, अपने ज्ञान स्वभाव से अपने आत्मा को अधिक जानते हैं भिन्न जानते हैं, तो मेरा ज्ञान स्वभाव है वो 6 द्रव्य स्वरूप लोक में है, तो 6 द्रव्य स्वरूप लोक जो है वो तो मेरे ज्ञान में आगे गुरुदेव क्या प्रकाशित करते थे कि ज्ञान की पर्याय जब कहते हैं तो उसमें 6 द्रव्य स्वरूप लोग तो विराजमान ही है, 6 द्रव्य का ज्ञान तो उसमें रहा हुआ ही है, तो ये जो अपना ज्ञान स्वभाव है उसमें जब आ जाते हैं तो उसमें 6 द्रव्य स्वरूप लोग तो आ ही जाते हैं, तो 6 द्रव्य स्वरूप लोग जो है वो तो मेरे गर्भ में रहे हुए है, मैं तो उससे ऊपर उठता हुआ ये 7म द्रव्य हूं, मेरा उसके साथ कोई भी संबंध नहीं है, मारा थी बीन रहे द्रव्यो साथ मारे सहज नहीं लक्षण संबंध है, तेथी एक नहीं छे अने व्यक्त छे, पोता थी विमुख अने परमी सन्मुख थईने जाणवा वाळो ज्ञान पण परक नहीं छे, जो इंद्रिय ज्ञान है खंड खंड ज्ञान है, एक एक ज्ञान पर सन्मुख नहीं होता है, बात अपनी जल्दी थी कि उपयोग बाहर नहीं जाता है, मगर उपयोग में जो अनेक प्रकार के गेय के आकार होते हैं वो उसमें लुप्त होके उसको जानने में अटक जाता है, तो जितना भी अपना क्षोत्रम है वो भी अखंड स्व पर प्रकाश सके, उसमें स्व भी जानने में आ रहा है और पर जितना अपना क्षोत्रम है उतना वो पर भी जानने में आ रहा है, एक साथ में अखंड पर्याय मगर वो सौ को तिरुभाव करके सौ के सन्मुख न देख के वो एक भी सब एक साथ में जानने में आ रहे हैं, पांच इंद्री के विषय और मन संबंधी विषय एक साथ में जानने में आ रहा है, फिर भी उसमें एक ज्ञाकार को पकड़ के उसके सन्मुख होके जब जो जानने में जाता है तो वो इंद्री ज्ञान खड़ा हो जाता है, तो पोता की विमुख वो अपने से विमुख हो जाता है और पर की सन्मुख होके जो जानने वाला ज्ञान है वो भी पड़ गए है। थोड़ी जे ज्ञान पर्याय में समस्त ज्ञेय नु ज्ञान थे ये पर्याय रूपे पण नहीं थत होना बिन अव्यक्त द्रव्य छु आम जाण एम आचार्य भगवान कहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं इस प्रकार का द्रव्य हूं, मैं अव्यक्त द्रव्य हूं, ये बाहर पे जो द्रव्य रहे वो उससे मैं भिन्न हूं और मैं ज्ञान स्वभावी हूं, तो ज्ञान के पर्याय जो है उससे भी मैं भिन्न हूं, इसमें ऐसी बात आई। तो ये ज्ञान की पर्याय से पर्याय है वो भिन्न है कि अभिन्न है, इससे तो भिन्न है, अभी इसकी बात नहीं चल रही है। और दूसरा बोल भी साथ में ले रहे हैं कि कषायों नो समूह भाव भाव व्यक्त है एना थी जीव भिन्न है, जैसे परद्रव्य स्वरूप लोक है वो तो भिन्न है, वो तो संयोगी द्रव्य है, वो तो संयोग आते हैं और चले जाते हैं, उसका मेरे साथ कोई भी संबंध नहीं है। उस प्रकार से उसके साथ के उसके परद्रव्य के साथ में संबंध रख के जो परलक्षी भाव खड़े होते हैं वो भी संयोगी भाव ही है, वो तो उसके संबंध से होने वाले भावक के भाव ही है, वो मेरे भाव नहीं है, वो जड़ भाव है, अचेतन भाव है, उसमें चैतन्यपना नहीं व्याप्ता है, तो वो जड़ भाव है, वो तो भावक के भाव है, इसलिए अभी इसकी चर्चा आपने को नहीं करनी है। और उसके विचार में लिखा है वो शीर्षक में ही लिखा है कि ये जो ये अध्यवसान आदि भाव जो जीव नहीं है तो ऐसा टंकोत्कीर्ण जीव क्या है, तो ये स्वभाव की चर्चा करने वाला ही ये अव्यक्त के बोल है, तो इसकी चर्चा करनी है। ये अपना स्वभाव है द्रव्य स्वभाव और ये पर्याय स्वभाव द्रव्य गुण पर्यायत्मक चैतन्य स्वभाव, तो ये जो ज्ञान पर्याय है इससे तो सर्वथा भिन्न है, अभी इसकी तो चर्चा ही नहीं करनी है, ये तो पुद्गल के परिणाम है, अभी अपने चैतन्य स्वभाव क्या है उसकी चर्चा चल रही है। तो ये जो द्रव्य स्वभाव है और ये जो पर्याय है प्रकट है तो उसके साथ भिन्न बनाए कि अभिन्न बनाए, तो इसका एक जवाब नहीं हो सकता है, कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न। किस प्रकार से भिन्न कि ये जो पर्याय है वो तो एक समिति है और ये तो ध्रुपण रहता है, तो दृष्टि की अपेक्षा से दृष्टि है वो भेद को ग्रहण करती है, वो एकाकार है निर्विकल्प है, वो ऐसा भेद नहीं कर सकती है, तो दृष्टि अपेक्षा से देखो तो ये सर्वथा भिन्न है, दृष्टि जो है वो अपरिणामी द्रव्य को ही ग्रहण करती है, तो दृष्टि की अपेक्षा से देखो तो ये जो पर्याय प्रकट होती है वो एक समय की पर्याय कि जिसमें समस्त देह का ज्ञान विद्यमान है उस पर्याय रूप भी आत्मा नहीं होता है। न्यायचंद भाई ने भी दृष्टांत दिया है कि जो दर्पण है तो उसकी जो अवस्था है उसमें अनेक प्रकार के गेह के प्रतिबिंब के आकार पड़ते रहते हैं, उससे भी उसका दल जो है वो भिन्न रहता है। इस प्रकार से ये एक समय की पर्याय में जो अनेक प्रकार के गेह के आकार पड़ते रहते हैं स्वर प्रकाश बना है उससे अपना द्रव्य स्वभाव जो है वो अनंत शक्तिमय वो सर्वज्ञपणा से परिणमता वो वर्तता हुआ जो अपना जो द्रव्य स्वभाव है वो एक समय की पर्याय में जिसमें गेह के आकार होते रहते हैं स्वपर प्रकाश पना होता रहता है उससे भी भिन्न है, इस अपेक्षा से ये पर्याय भिन्न है। इसमें ये दृष्टि प्रधान दृष्टि का विषय सिद्ध करना है और एक अपेक्षा ये है कि ये जो ज्ञान पर्याय है वो आत्मद्रव्य से अभिन्न है, क्योंकि ये आत्मद्रव्य से यदि अभिन्न नहीं हो गई तो जो द्रव्य में जो वैभव भरा हुआ है द्रव्य में अनंत शक्ति का जो वैभव भरा हुआ है उसकी कारण पर्याय वर्तती रहती है, वो उससे तन्मय और एकाकार मग्न होके उसको तन्मयपणे नहीं अनुभव करती हो तो जो द्रव्य का वैभव है वो पर्याय में कैसे पसरेगा कैसे फैलेगा। अनंत शक्ति की चर्चा चल रही है तो अनंत शक्ति जो है वो सब उसका जो जब अनुभव करते हैं गुण गुणी का भेद छोड़ के अभेद का अनुभव करते हैं तो वो जो शक्ति है वो द्रव्य गुण में तो है ही मगर वो पर्याय में पसरती है, तो अभिन्न बना नहीं होवे तो पर्याय में कैसे पसरेगी, तो ज्ञान अपेक्षा से वो अभिन्न बना भी है वो अभिन्न पर भी जानना चाहिए। और अभी जो अभी अपन ने बात की कि ज्ञान प्रदान ये दृष्टि प्रदान शुद्धने का विषय वो ज्ञान प्रदान शुद्धने का विषय, ये ज्ञान प्रदान शुद्धने का विषय है ज्ञान प्रदान शुद्धने का विषय
अध्यात्म
अध्यात्म नहीं है, आगम की तो अभी बात ही नहीं है, आगम तो छोड़ दिया है, ये पूरा दृष्टि प्रदान निश्चय का विषय और ये ज्ञान प्रदान दोनों सुधरने का विषय है, ये भी सुधरने का विषय है और ये भी सुधरने का विषय है, या ऐसा कहो कि ये दृष्टि प्रदान दृष्टि का विषय या ये ज्ञान प्रदान दृष्टि का विषय, इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये इसको ग्रहण करे तो आत्मा का अनुभव हो सकता है कि नहीं, ये किसी को ऐसा लग सकता है, ये तो प्रमाण ज्ञान का विषय हो गया, ये इसमें कैसा दृष्टि का विषय हो गया। तो ये बात समझने के लिए अपन थोड़ा ये गुरुदेव का प्रमाण देखते हैं कि क्या कहते हैं। ये परिशिष्ट का जो पूरा चैप्टर है, अनेकांतात्मक आत्मद्रव्य जो है उसको समझाने वाला ये परिशिष्ट है। क्रम रूप से प्रवर्ता हुआ और अकर्म रूप से प्रवर्ता हुआ आत्मद्रव्य की जो बात चल रही है वो तथे अतथे एक है अनेक है सत है असत है और नित्य है और अनित्य है। इस प्रकार से द्रव्य गुण और पर्याय सबकी चर्चा चल रही है। उस आत्मद्रव्य को गुरुदेव कहते हैं कि तत्त एक अनेक ऐसे 14 बोलो आत्मा में है एक समय में, ऐसा 14 बोल एक समय में है, ऐसा आत्मद्रव्य जो अपना है वो क्रम रूप से प्रवर्ता हुआ और अक्रम रूप से प्रवर्ता हुआ जैसा आत्मद्रव्य है चैतन्य द्रव्य है वो ज्ञान मात्र भाव है उसको एक समय में है ऐसी दृष्टि करे तो सम्यक दर्शन होता है। गुरुदेव के
कौन सा प्रवचन है?
समय सारथी जी भाग 11 पेज नंबर 311 बीच में है। चारों 14 प्रकार के बोल जो आत्मा में है ऐसा अपना ज्ञान मात्र भाव है। किसी को ऐसा लगता है ये तो प्रमाण ज्ञान का विषय है, ये तो प्रमाण का पक्ष हो गया, इसमें तो प्रमाण ज्ञान की बात आ गई, ये तो परिणामी द्रव्य हो गया, ये उत्पाद विवाह हो गया। नहीं, ऐसा ऐसा कोई भेद नहीं करने का है, वो अभेद पर देखना है कहीं जैसे इसमें कुछ भेद नहीं करने का है। दृष्टि प्रधान दृष्टि का विषय जब दृष्टि में लेते हैं सुनने का विषय तरीके देखते हैं तो उसमें अनंत गुण के या निमग्न पर्याय के या कारण शुद्ध पर्याय के अनंत वैभव है इसमें, वो उसके भेद नहीं करते हैं, वो अभेदपणे दृष्टि में रहता है। ऐसा ये जो है उसमें उत्पाद पर्याय के भेद है मगर उत्पाद के व्यतिरिक्त नहीं देखने हैं, वो ज्ञान मात्र भाव तरीके देखना है उसको, चैतन्य मात्र भाव तरीके, ज्ञान मात्र भाव तरीके, ज्ञायक भाव तरीके जब उसको देखते हैं तो ये ज्ञान प्रधान दृष्टि का विषय होता है। वो ऐसा जैसा है ऐसा उसको ग्रहण करे तो सम्यक दर्शन होता है, ऐसा ये गुरुदेव का बोल है।
तो दृष्टि के विषय में ये तत्त एक अनेक सब धर्म आ जाते
हैं, भेदपणे आता है, ज्ञान उसको भेदपणे जानता है। जब दृष्टि उसको निर्विकल्पणे एक अखंड अभेद एक तरीके स्वीकार करती है उसी समय में ज्ञान तो उसको सबको जानता है। जैसे दृष्टि का विषय जो है वो दृष्टि उसको निर्विकल्पणे भूता स्वभाव को अखंड अभेद एकपणे जानती है तब वो उसी विषय को ज्ञान कैसे जानता है? तो ज्ञान तो साकार है सविकल्प है तो वो ज्ञान कैसा जानता है कि यार ये जो विषय है उसमें तो अनंत शक्तियां रहेंगी दुनिया, उसमें अनंत वो कारण शुद्ध पर्याय वो हर एक समय में वो अनंत एक एक गुण की कारण शुद्ध पर्याय वर्त रही है उसमें सब पर्याय निमग्न है। इस प्रकार से वो ज्ञान जानता है, इस प्रकार से ये ज्ञान और दृष्टि का विषय इस प्रकार से रहता है। ऐसे इसी में जब वो ज्ञान प्रदान सुनने की बात चलती है तो ये अभेदपण है, वो इसको ग्रहण करे तो ये सुनने का विषय होता है मगर उसी समय में वो ज्ञान जो है वो तो उसमें रहे हुए सब भेदों को भी जान लेता है, सब व्यवहार कहता है। इस प्रकार से जब इसको निश्चयने का विषय कहे अभेदपण देखे तो सुनने का विषय होता है, उसी समय में वो अनंत शक्तियां और अनंत उसकी व्यक्तियां ऐसे क्रम रूप से और अक्रम रूप से प्रवर्ता हुआ जो कई जो भी जितना भी ज्ञान में आ रहा है वो सगला एक आत्मा है। इस प्रकार से वो ज्ञान उसी समय में वो आत्मद्रव्य को इस प्रकार से जान लेता है।
और भी विषय में पर्याय आगे ऐसा लगता है ऐसा
नहीं, ये नहीं है ये बात, ये दो दृष्टि प्रधान दृष्टि के विषय में नहीं है, दो भेद कर दिए, ये दृष्टि प्रधान और ज्ञान प्रधान, इसमें थोड़ा अपन लेते हैं कुछ देखा क्या है, ये बात नहीं चलती है। इसलिए ये मैं थोड़ा बात लेता हूँ ज्ञान खींचाने के लिए कि ये दृष्टि के विषय जो है वो पर्याय मात्र से रही थे वो बात प्रसिद्ध है और वो बात बराबर है। दृष्टि प्रधान जो दृष्टि का विषय है वो तो पर्याय मात्र से रही थी है, उत्पाद से रही थी है, उसमें पर्याय का बिल्कुल प्रवेश नहीं है, वो निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक भाव से वो भले आनंद उसमें कारण शुद्ध पर्याय वर्तती है वो विषय अलग है मगर वो उत्पाद वाली कोई भी पर्याय हो सामान्य उपयोग हो या शुद्ध उपयोग हो या परिपूर्ण शुद्ध उपयोग हो केवल ज्ञान की पर्याय से भी रही थी। ये दृष्टि प्रधान सुनने का विषय है, दृष्टि प्रधान दृष्टि का विषय पर ज्ञान प्रधान जो दृष्टि का विषय हो, ज्ञान यदि एक कोई स्वीकार करे ज्ञान प्रधान जब बोला तो ज्ञान है वो अनेकांतात्मक है, दृष्टि एकांतात्मक है और ज्ञान जो है वो अनेकांतात्मक है, वो परिशिष्ट में सब बोल लिए हुए। यदि एकांत है वो पर्याय रूप स्वीकार करता है तो भी पशु है, वो एकांतवादी है, वो सुसुरु को नहीं साध सकता है, और यदि वो एक अकेला द्रव्य रूपी स्वीकार करे तो भी वो पशु जैसा है, जो एकांतवादी है वो अपने आत्मद्रव्य को नहीं पा सकता है। इसलिए ध्यान जो है वो दोनों को स्वीकार करता है, दोनों का मगर कैसा अभेद पर स्वीकार करता है, तो निश्चय निका शुद्ध निका विषय बनता है।
तो ज्ञान प्रकार व्यक्ति से संयोग हो सकता है।
इसमें एक गुरुदेव ने लिया कि ये 14 बोल जो है वो जैसा है ऐसा आत्मद्रव्य को जैसा है ऐसा दृष्टि में लो तो सम्यक दर्शन होता है, इसलिए मैं गुरुदेव का प्रमाण देता हूँ। ये अभी दूसरा अनुभव, दूसरा भी प्रमाण देता हूँ। ये जानन क्रिया, इसमें जो जानन क्रिया है अनंत गुण की परिणति साथ है, जब सूर्य प्रकट होता है तो उसके अनंत गुण की परिणति साथ है, पर जानन क्रिया में अनंत पर एक ज्ञेय है और पोते ज्ञान है। ये अनंत जो है वो ज्ञेय भी है और ज्ञान है, पर अभेद है, और इसके साथ से अभेद पड़े रही हुए। हा पकड़ा एक पकड़ो प्रभु मुमुक्षु, आ द्रव्य दृष्टि नो विषय है के प्रमाण मुमुक्षु ने जब ऐसी बात चली तो द्रव्य दृष्टि का विषय तो प्रसिद्ध है, पर ये मात्र शरीर थे। इसमें ये बोलते हैं कि अभेद है, अभेद की बात चल रही तो ये प्रमाण ज्ञान का विषय है,
दृष्टि का विषय
के दृष्टि का विषय ऐसा मुमुक्षु का प्रश्न है। आ द्रव्य दृष्टि नो विषय है के प्रमाण, उत्तर दृष्टि नो विषय, आ तो ज्ञान नो विषय बनायो, ज्ञान थी बात करे छे। आ ज्ञान लक्षण अने लक्ष अभेद छे, ज्ञान लक्षण अने लक्ष द्रव्य अभेद छे, तो तेनी उपर दृष्टि पड़वाथी ज्ञान मां अनंत धर्मो अनंत गुणो अने अनंती पर्याय एक समय मां एक रूपे नक्ति क्रिया मां बधा आवी जाय छे। वो लक्षण लक्ष का अभेद वो परिशिष्ट में जो आया है भूल में, कि लक्षण और लक्ष का भेद है कि अभेद है, कि नहीं द्रव्य पण अभेद है, जो काय भी कर्म रूप से प्रवर्तता हुआ और अकर्म रूप से प्रवर्तता हुआ जो ज्ञान मात्र भाव है उसमें अचलित पड़े दृष्टि का स्थापन करते, ऐसे आचार्य भगवान का श्लोक शब्द है अमृतचंद्र आचार्य का, ऐसे ज्ञान मात्र भाव में अचलित पड़े दृष्टि का स्थापन करते है वो अनंत शक्तियां उछड़ती है। जो अनंत शक्तियां नहीं प्रकट होती थी नहीं परिणमती थी ऐसे ज्ञान मात्र भाव को, इसमें यह जो ज्ञान मात्र भाव है उसको अभेद पड़े देखने का, उसको पर्याय का भेद नहीं देखना है। इसमें
विशिष्ट पर्याय
समावेश
नहीं, अभेद तरीके,
हाँ अभेद तरीके, वो वो उसका विशेष वो व्यतिरिक्त उसको नहीं देखना का है, उत्पाद भी नहीं देखता है, कोई भी उसका पर्याय का भेद नहीं देखना है, कौन सी पर्याय है कौन से गुण की है ऐसा भेद नहीं देखना का है, और द्रव्य और पर्याय का भेद भी नहीं देखना का है, ऐसा ज्ञान मात्र भाव ऐसा कहते हैं। तो ऐसा जो ज्ञान मात्र भाव है वो दृष्टि का विषय,
कौन सी उंगली वाला
नहीं है, तीनों उंगली का अभेद पना, तीनों उंगली का अभेद पना इस प्रकार से
जो अनुभव है वो निर्विकल्प प्रमाण माना।
अभी फिर चर्चा करेंगे, अभी ये ले जाएगा टाइम अपने को कम है, 2 घंटे का ही है, उसमें ले सब लेने का है। मुमुक्ष आज द्रव्य ने हमें आगे थोड़ी ये सब बात चली गई, 5 मिनट हो गया, मगर फिर भी वो मुमुक्षु की शंका का समाधान नहीं हुआ। फिर वो पूछता है मुमुक्षु, वो ही मुमुक्षु पूछता है क्या द्रव्य ने पर्याय भेगा लीता छठा प्रमाण नहीं, ये क्या बात करते दृष्टि का विषय तो पर्याय मात्र शरीर, और ये तो आप तो द्रव्य और पर्याय दोनों को दिला के दृष्टि का विषय कह रहे हैं तो प्रमाण नहीं। उत्तर अभी तो जानन क्रिया पर्याय में बधु आ जाए, ये सब आ जाता है, जानन क्रिया जो होती है ज्ञान जो होता है उसमें सब आ जाता है। एटलू हा ये क्रिया ज्ञान द्रव्य ज्ञान बने साथ आ जाए, भले निर्विकल प्रमाण कहो पर ये बात अत्यार नहीं, ये बोलते हैं कि निर्विकल प्रमाण है, ये निर्विकल प्रमाण भी बोलते हैं और दृष्टि का विषय भी बोलते हैं। तो इसका क्या रहस्य है, वो यदि द्रव्य है और ये पर्याय है वो दोनों को जुदा जुदा देखो तो प्रमाण ज्ञान का विषय होता है, ये दोनों को जुदा जुदा देखो ये निश्चय का विषय और ये व्यवहार का विषय, ये दृष्टि प्रदान में आ जाएगा तो प्रमाण ज्ञान का विषय हो जाएगा। तो प्रमाण में से वो व्यवहार करने का निषेध करके वो द्रव्य का आश्रय और अवलंबन किया जाता है, इसका निषेध करके वो इसका निषेध शुद्ध नहीं का विषय होता है, दृष्टि प्रदान शुद्ध नहीं होता है,
भेद का निषेध
नहीं, ये जब भेद करते हैं तो दोनों को द्रव्य और पर्याय दोनों को भिन्न भिन्न करते हैं तो वो प्रमाण ज्ञान का विषय होता है, और उसको अभेद तरीके देखो ऐसा कहते हैं वो, ये बात इधर नहीं है, ये प्रमाण ज्ञान का नहीं है, प्रमाण ज्ञान की बात नहीं करनी है अपने को, इधर दृष्टि के विषय की बात करनी है, शुद्ध के विषय की बात करनी है, तो अभेद पड़े देखो वो बात तुझे कह रहे हैं जो और भी प्रमाण। उदाहरण इसमें क्या हो सकते हैं नहीं वो समझने की कोशिश करो, ये नई बात चलती है वो मतलब गुरुदेव के प्रमाण में पढ़ रहा हूँ, ये अपने कोई घरते घर की तो बात नहीं है, वो गुरुदेव के प्रमाण दे रहा हूँ, किस प्रकार से है वो अपने को बिठाना पड़ेगा, ज्ञान प्रदान कथन है।
फैमिली का कोई उदाहरण दो समझ में आ जाए,
ऐसा नहीं है, एक बहुत गंभीर विषय है, अभी अभी चलता है, अभी सुनो टाइम कम है अपने पास। ये देखो दृष्टि प्रदान जो है वो उदार स्वभाव है, तो उदार स्वभाव है वो दृष्टि का विषय वो तो बात चलती है, मगर प्रवचन साल में आवे से गुरुदेव ने ये समस्या सिद्धि भाग 9 का है, ये 316 का था उसके ऊपर प्रवचन है, 382 पेज नंबर 382 प्रवचन साल में आवे से ने कि ज्ञान ने ज्ञान की श्रद्धा नातु तत्व और नई तत्व की श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन की बात है, व्यवहार सम्यक दर्शन की बात नहीं, वो नातु तत्व अपना जो द्रविगुण पर गया है उसमें अपना नातु तत्व और उसमें ही जानने वाले वो जानने में आने वाले पूरे का पूरा ज्ञेय तत्व, ज्ञेय तत्व माने क्या कि नये तत्व लोकारोपे आत्मा ज्ञान प्रमाण है ना नई प्रमाण है नई लोकारोप प्रमाण है, तो नातु तत्व और नई तत्व दोनों का श्रद्धा वो निश्चय सम्यक दर्शन है, श्रद्धा है एक ठेकाण श्रद्धा विषय एक दर्शन त्रिकाणी नायक उतार स्वभाव है एम कहू कि त्रिकाणी नायक जो स्वभाव है वो ही दृष्टि का विषय एक ठेकाण ही कीधु अने क्या कहू प्रवचन सार मां कि ज्ञान पोतानु अने ज्ञेय एनु ज्ञान बे श्रद्धा से समय आ हा हा एवं हवे मुमुक्षुको प्रश्न उठा मुमुक्षु बे श्रद्धा निश्चय सम्यक के व्यवहार सम्यक उत्तर निश्चय निश्चय ऐसा वो गुरुदेव का वो शब्द है वो निश्चय के ऊपर इतना जोड़ दिया ये निश्चय की बात चल रही है ये व्यवहार नहीं है ये निश्चय 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 से आप स्वपर ना विभाग नु दर्शन आ निश्चय से ત્યાં એમ કહ્યું કે જ્ઞાન અને જ્ઞેય બેની શ્રદ્ધા જે સમકિત છે એ પણ નિશ્ચય છે વ્યવહાર નહીં આ હા હા હું મૂકશું જ્ઞાન પ્રધાન શ્રદ્ધા થઈ ઉત્તર જ્ઞાન પ્રધાન કથનમાં એ આવે એમ જ આવે ત્યાં બેનું ભેગું લીધું છે જ્ઞાન પર્યાયનો સ્વભાવ છે કે જે પરને જાણે એ જ્ઞાન અને પોતે વસ્તુ બેની શ્રદ્ધા જે સમકિત ત્યાં એમ લીધું છે ક્યાં કેટલી અપેક્ષાઓ પડે લોકો મૂંઝાઈ જાય આત્મદ્રવ્ય છે ઉસકા દ્રષ્ટિ કા ઓર જ્ઞાન કા કૈસા સ્વભાવ હૈ વો જૈસા હૈ એસા યદિ નહીં સમજે ઓર એક પણ કોઈ યદિ પક્ષ હો જાવે તો એ સબ સમજ મેં નહીં આતા હૈ તો લોક મૂંઝાઈ જાતે હૈ એસા ગુરુદેવ કા કહેના હૈ અભી અભી દેખો આગે ભી લેતે હૈ કે મૂંઝુ કહેતે હૈ કે ચોખ્ખી બાત હૈ મૂંઝાઈ જાય એસી બાત કી ના તો મૂંઝુ કહેતે હૈ કે ચોખ્ખી બાત હૈ ઉત્તર છે એ પણ છે એકાંત નથી એ એકાંત નથી ઇસકા ક્યા દ્રષ્ટિ પ્રધાન સે યદિ આત્મદ્રવ્ય કો દેખો ઓર અપરિણામી આત્મદ્રવ્ય હૈ વો એકાંત દ્રષ્ટિ કા વિષય હૈ એસા નહીં હૈ એકાંત નહીં અનેકાંતમાં પણ એક સમયક એકાંત એવું સમજે છે ઇસકા ક્યા કે અનેકાંત મેં ભી દ્રષ્ટિ પ્રધાન સે ઇસકો દ્રષ્ટિ મેં લો યા જ્ઞાન પ્રધાન સે ઇસકો દ્રષ્ટિ મેં લો તો અનેકાંત હૈ વો અનેકાંત મેં ભી એકાંત હી સમા જાતા હૈ યે આત્મદ્રવ્ય હૈ વો દો રૂપ વાલા હૈ યે ઇસકા ધ્યેય રૂપ હૈ ઓર ઇસકા યે ધ્યેય રૂપ હૈ और जब ध्येय रूप जो है वो दृष्टि में लेते हैं तब वो दृष्टि में लेने वाली कौन है तो अभी तो वो अभेद होके दृष्टि में लेती है या विन्द्र के दृष्टि में लेती है वो तन्मय होके दृष्टि में लेती है तो द्रव्य पर्यायत्मक वस्तु का उसको ज्ञान होता है ऐसे ही ये जब ज्ञान प्रदान दृष्टि का विषय जो हम कहते हैं तो ये ज्ञान की पर्याय जो है वो तो एक समय पूर्ति है और उसका आधार कौन है उसमें अन्मय पड़े रहा हुआ कौन है उसमें तन्मय कौन है ये द्रव्य है अन्वय रूप से रहा हुआ जो उत्पाद वाली पर यह जानना 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 जैसा स्वभाव का स्वनाध्यन करता है उसमें अन्वय पड़े रहा हुआ न द्रव्य है ऐसा वो ज्ञान स्वयं विवेक कर लेता है तो दृष्टि इसके ऊपर चली जाती है और द्रव्य और पर्याय इस प्रकार से दो भेद भी है ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है जब ऐसे ज्ञान मात्र भाव को वो दृष्टि में लेता है तो द्रव्य और पर्याय ऐसे दो का भेद भी कर लेता है वो ज्ञान क्योंकि अनेकांत स्वभाव वाला है तो इसकी गौणता हो जाती है उसकी इसके ऊपर दृष्टि चली जाती है इसलिए इसमें भी द्रव्य पर्यायत्मक वस्तु का ज्ञान होता है ये तो प्रयोग की प्रकार दो अलग अलग है इसको यदि दृष्टि में लो तो ये दृष्टि प्रधान प्रकार होता है और ऐसा आत्मद्रव्य जो है वो ज्ञान मात्र भाव है इस प्रकार से इसको दृष्टि में लो तो ये ज्ञान प्रधान प्रकार है मगर जब अनुभव होता है तो एक ही प्रकार का होता है द्रव्य पर्यायत्मक वस्तु का दृष्टि प्रधान में जब देते हैं देखते हैं तो भी वो द्रव्य पर्याय वस्तु का अनुभव होता है, और जब ज्ञान प्रदान से लेते हैं तो भी ये द्रव्य तो दृष्टि में आता ही है, तो द्रव्य पर्यात्मक वस्तु का अनुभव होता है। इस प्रकार से ये आगे आगे कहते हैं, अनेक आत्मा पर समय के कारण वो समाई जाए। हा, पोते पोतानु ज्ञान अने परनु ज्ञान, इसमें अपने का ज्ञान और पर का ज्ञान सब राहु भाई है, बधू थईने संकित नो विषय छे एम पण कहे। अने एक बाजु एकलो ભૂતાર ત્રિકાળ સત્તા એ સંકિત નો વિષય છે એમ પણ કહે, દર્શન પ્રદાન થી એમ કહે અને જ્ઞાન પ્રદાન થી આમ કહે। બે અપેક્ષા જાણવી જોઈએ, બે ખોટું નથી, બે યથાર્થ છે। હા એ સબ પૂછે કે ઇસ પ્રકાર સે પ્રમાણ હૈ, એ જ્ઞાન પ્રદાન ને સિદ્ધાંત કી વાત હુઈ, દ્રષ્ટિ કી વાત હુઈ। અભી ઇસમે યે જો દૂસરા બોલ હૈ કસાયો કા સમૂહ ભાવ ઉત્પાદ, ઇસકો તો આપને એક भावक के कारण से होता है, चैतन्य का ये परिणाम नहीं है। ये जो रागादि भाव होते हैं, मोरागस के भाव होते हैं, वो भावक में इस प्रकार का रस खड़ा होता है। भावक जो कर्म है वो सत्ता में पड़े हुए, वो जब उदय में आते हैं तो उसको रस लेके खड़े होते हैं, तो उसके साथ संबंध करके ये भावक का भाव खड़ा होता है। ये भावक का भाव है, भावक का माने वो कर्म का भाव है, वो आत्मद्रव्य का भाव नहीं है। आत्मद्रव्य का भाव तो ये है, चैतन्य वही परिणाम जो है वो आत्मद्रव्य का भाव है, मगर ये जो भाव है वो तो कर्म के संबंध से होने होते हुए के कारण वो भावक का भाव कह दिया उसको। जिसको आगम ज्ञान प्रदान से चैतन्य के विकार चित विकार और ये जो कहते थे वो अभी तो इसको भावक के भाव कह के उसको निकाल दिया, वो चैतन्य भाव की वो अपना स्वभाव दिखाना है, चैतन्य स्वभाव दिखाना है। इसलिए ये सब भाव के भाव है वो चिंता कराते हैं। इस प्रकार से ये रागादि भाव जीव की पर्याय में होते होने पर भी, चित्त विकार होते होने पर भी, शुद्ध चैतन्य की स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए ये समय सार में वो उसको पुद्गल भी कहा है, वो ज्ञान भी कहा है और जड़ भी कहा है। इस भावों से चैतन्य अपना आत्मद्रव्य जो है वो भिन्न है, ऐसा मैं अव्यक्त द्रव्य हूं। इस प्रकार से ये आत्मद्रव्य को ऐसा ज्ञान, वो अरस है, वो अरूप है, अगंध है, अशब्द है और अव्यक्त है, अलिंग ग्रहण है, इस प्रकार से आत्मद्रव्य को ज्ञान तो जानने वाली ये पर्याय है। अभी तीसरा बोल, चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्ति अनिमग्न है, ये तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से आ दिया कि चित्त सामान्य में ये जो अभी अभी अंदर ले जाते हैं, ये व्यक्त पर्याय से बाहर करके वो व्यक्त पर्याय में से निकाल के अभी ये दृष्टि का विषय आता है। अभी जो अभी के जितने बोल रहे हैं वो पूरे का पूरा दृष्टि के विषय को चिंत करने के लिए है, अभी इसकी चर्चा नहीं है। ये जो है तो अपने द्रव्य स्वभाव जो है चित्त सामान्य, उसमें चैतन्य की सर्व व्यक्ति अनिमग्न है। भूतकाल की जितनी पर्याय भी प्रकट हुई और भविष्य की जितनी भी पर्याय होने वाली है वो सब चित्त सामान्य में वो निमग्न पड़े रही हुई है, परम पारणामिक भाव से रही हुई है, वो उत्पाद वाली नहीं है। जब प्रकट होगी तो द्रव्यांतर के संबंध से उत्पाद वाली होगी, मगर ये अभी तो द्रव्यांतर का संबंध नहीं है, वो तो स्वाभाविक पर्याय है। अभी स्वभाव विभाव की चर्चा चलती तो ये जो पर्याय है वो स्वाभाविक पर्याय है, जैसे कारण शुद्ध पर्याय है वो स्वभाव पर्याय है, अंदर में रही हुई पूजित पंचम भाव की परिणति नर नारकादि पर्याय है वो वैभाविक पर्याय है, और ये अंदर में जो कारण शुद्ध पर्याय है पूजित पंचम भाव की परिणति वो स्वभाव पर्याय है। ऐसे ही इसमें रही हुई निमग्न पर्याय जो है वो स्वभाव पर्याय है, और उसमें से उत्पन्न होने वाली उदय उपश्रम क्षायिक वाली पर्याय जो है वो वैभाविक पर्याय है, वो द्रव्यांतर के संबंध वाली है। इस प्रकार से और गुरुदेव ने ऐसा लिया था कि वो द्रव्य में से आती है और फिर द्रव्य में चली जाती है, जैसे पानी का तरंग द्रव्य में से उठता है और फिर द्रव्य में पानी वो उसमें समुद्र में गुरूप हो जाता है, इस प्रकार की बात जो आती है। तो परम प्राणामिक भावों में से यदि वो द्रव्य में से वो पर्याय आती है, वो द्रव्य में जाती है, द्रव्य में आती है, द्रव्य में आती है, तो ऐसा भी बोलते थे कि यह सहज परम प्राणामिक भाव, सहज प्राणामिक भाव, सहज प्राणामिक भाव, उस जो ऐसा जो अपना निष्क्रिय तत्व है उसमें स्थिर तत्व में आत्मद्रव्य स्थिर होता है। तो यदि ऐसा आता है और जाता है तो आत्मद्रव्य में कैसा वो परम प्राणिक भाव का अस्तित्व कैसे देगा, तो इसकी ये थोड़ी मार्मिक बात है, ये अपन कर लेंगे।